एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आप सबका स्वागत। आज हम एक बहुत बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं, शांति। आखिर ये है क्या?
अक्सर हम सोच लेते हैं, अच्छा, जंग नहीं हो रही, हिंसा नहीं है, तो मतलब शांति है।
हाँ, बस इतना ही।
पर क्या ये वाकई काफी है? और दुनिया भर में शांति कायम करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं, क्या वो सच में काम करते हैं?
बिल्कुल, और यही यही वो सवाल हैं जो आज के हमारे विचारक ओलिवर पी रिचमंड उठाते हैं। हम आज उनके काम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि शांति का मतलब असल में क्या है। और ये जो एक प्रचलित तरीका है ना, जिसे उदार शांति या लिबरल पीस कहते हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, खासकर शांति स्थापना की भूमिका और उसके लक्ष्य को इस मॉडल ने कैसे देखा है, और रिचमंड क्यों मानते हैं कि ये परिभाषा न सिर्फ अधूरी है बल्कि कई बार नुकसान भी पहुंचाती है।
और ये चर्चा आज के समय में बहुत जरूरी हो जाती है। हम रोज देखते हैं खबरों में, कहीं शांति समझौते हो रहे हैं तो कहीं सालों से चल रहे शांति मिशन वो नाकाम होते दिख रहे हैं।
बिल्कुल,
अफगानिस्तान हो या अफ्रीका के कई देश, सवाल यही उठता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ चुनाव करा देना या एक खास तरह की सरकार बना देना ही शांति है? रिचमंड तो हमें इस पूरी सोच पर ही सवाल उठाने को कहते हैं।
सही बात है।
तो सबसे पहले, ये ओलिवर पी रिचमंड हैं कौन, जिनके विचारों पर हम आज इतनी गहराई से बात कर रहे हैं?
जी, ओलिवर रिचमंड जो हैं, वो शांति और संघर्ष अध्ययन यानी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के फील्ड में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर हैं और पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से इस विषय पर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
अच्छा।
पर वो सिर्फ यूं कहिए किताबी विद्वान नहीं है, ये उनकी खास बात है। उन्होंने बाल्कन्स, साइप्रस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन जैसे कई संघर्ष वाले इलाकों में जमीनी स्तर पर काम भी किया है।
ओहो, यानी कि सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि असल दुनिया में उन सिद्धांतों की परख भी।
बिल्कुल, और उनका नजरिया इसलिए भी मतलब यूनिक है क्योंकि वो सिर्फ पश्चिमी विचारों या इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी तक ही सीमित नहीं रहते। वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इतिहास और सबसे जरूरी, उन आम लोगों के अनुभव,
हाँ,
जो संघर्ष और शांति के बीच जी रहे होते हैं, जिनकी आवाजें अक्सर बड़ी बहसों में कहीं खो जाती हैं, उनको अपनी सोच में शामिल करते हैं। और यही अनुभव, यही जमीनी समझ उन्हें उस मॉडल की आलोचना करने की एक खास ताकत देती है जो पिछले कई दशकों से, आप कह सकती हैं, शांति स्थापना पर हावी रहा है, जिसे वो उदार शांति कहते हैं।
ये उदार शांति वाला विचार,
जी, ये वही सोच है कि अगर आप किसी देश में लोकतंत्र ले आएं, वहां का बाजार खोल लें और पश्चिमी स्टाइल के मानवाधिकार लागू कर दें, तो शांति अपने आप आ जाएगी, एक तरह का फॉर्मूला।
अच्छा।
रिचमंड इसी पर सवाल उठाते हैं, क्या ये सच है? क्या शांति का बस यही एक नुस्खा है जो हर जगह हर समाज में फिट हो सकता है? और क्या शांति स्थापना की भूमिका बस इतनी है कि इस नुस्खे को लागू कर दिया जाए?
तो फिर रिचमंड का मुख्य तर्क क्या है, वो शांति को कैसे देखते हैं?
देखिए, रिचमंड का कहना है कि शांति सिर्फ हिंसा या युद्ध का न होना नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है, जिसे अक्सर नेगेटिव पीस या नकारात्मक शांति कहा जाता है। असली शांति, जिसे वो पॉजिटिव पीस या सकारात्मक शांति कहते हैं, वो कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। उसमें सामाजिक न्याय है, बराबरी है, मानवाधिकारों का असली सम्मान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और एक ऐसा शासन है जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। मतलब सिर्फ ऊपरी ढांचा नहीं बल्कि असलियत में बदलाव।
और वो इससे भी आगे जाते हैं शायद।
हाँ, बिल्कुल, वो एक और बहुत दिलचस्प बात करते हैं, रोजमर्रा की शांति या एवरीडे पीस की।
रोजमर्रा की शांति, ये क्या है?
ये वो शांति है जो हम और आप जैसे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाते हैं, निभाते हैं, अक्सर बड़ी बड़ी संधियों या जो फॉर्मल शांति प्रक्रियाएं होती हैं उनके बाहर।
अच्छा।
जैसे?
जैसे
कैसे? अलग अलग समुदाय के लोग बाजार में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, व्यापार करते हैं। कैसे पड़ोसी आपस में छोटे मोटे झगड़े सुलझा लेते हैं। कैसे मुश्किल हालात में भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वो शांति है जिसे ऊपर से आने वाले शांति मिशन अक्सर देख ही नहीं पाते या उसे कोई खास महत्व नहीं देते।
ये तो बहुत अहम बात है।
और यहीं से वो उदार शांति मॉडल की अपनी तीखी आलोचना शुरू करते हैं। उनका कहना है कि ये मॉडल जो लोकतंत्र, मुक्त बाजार और पश्चिमी मानव अधिकारों पर इतना जोर देता है, असल में एक तरह का वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है।
पॉलिटिकल प्रोजेक्ट,
हाँ, मतलब कि उसका असली लक्ष्य अक्सर उन समाजों को पश्चिमी देशों जैसा बनाना होता है, भले ही वहां की स्थानीय जरूरतें कुछ और हों, वहां की संस्कृति इतिहास अलग हो। रिचमंड इसे एक कसम का नव उपनिवेशवाद यानी नियो कॉलोनियलिज्म तक कह देते हैं।
नव उपनिवेशवाद, ये तो काफी मजबूत शब्द है।
जी, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ विचारों और मॉडलों के जरिए एक तरह से कब्जा किया जाता है।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये टॉप डाउन, मतलब ऊपर से थोपा गया मॉडल काम नहीं करता, तो फिर टिकाऊ शांति आएगी कैसे?
रिचमंड का जवाब है, नीचे से ऊपर देखो, जमीनी हकीकत पर ध्यान दो, बॉटम अप अप्रोच।
बॉटम अप,
हाँ। स्थानीय लोगों का जो ज्ञान है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके अपने जो तरीके हैं शांति बनाए रखने के, उनको समझो और उन्हें मजबूत करो। शांति स्थापना की भूमिका उनके हिसाब से बाहर से समाधान लाना नहीं है।
तो फिर क्या है
भूमिका? है अंदर की जो क्षमता है, जो लोकल कैपेसिटी है, उसे पहचानना और उसे पनपने में मदद करना, एक माली की तरह, न कि इंजीनियर की तरह।
माली और इंजीनियर, ये अच्छी उपमा है।
हाँ, और लक्ष्य सिर्फ स्थिरता या कोई खास मॉडल लागू करना नहीं है, लक्ष्य है मुक्ति या इमेंसिपेशन।
मुक्ति,
हाँ, मतलब लोगों को उन ताकतों और उन ढांचों से आजाद करना जो उन्हें दबाते हैं, चाहे वो गरीबी हो, अन्याय हो या बाहरी नियंत्रण हो, ताकि वो अपनी शांति खुद बना सकें अपने तरीके से।
चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये जो शांति की समझ है, आपने कहा ये हमेशा से ऐसी नहीं थी।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रिचमंड हमें याद दिलाते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं में शांति के अलग अलग मायने रहे हैं। जैसे पुराने चीनी दर्शन को देखें तो वहां प्रकृति और समाज के साथ एक तालमेल, एक हार्मनी को शांति माना गया।
अच्छा।
या प्राचीन ग्रीस में जाएं तो वहां डिकायोसी ने, यानी न्याय को, एक शांतिपूर्ण समाज की नींव माना गया।
और मध्ययुग में?
मध्ययुग में यूरोप में न्यायपूर्ण युद्ध या जस्ट वॉर की थ्योरी आई, यानी कि युद्ध कब नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है। ये दिखाता है कि शांति की बात हमेशा हिंसा के संदर्भ में भी होती रही है।
और फिर ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट का दौर आया।
हाँ, तब इमानुएल कांट जैसे विचारकों ने शाश्वत शांति, परपेचुअल पीस का आइडिया दिया, कि अगर सभी देश रिपब्लिक बन जाएं तो स्थायी शांति संभव है। यहीं से आप कह सकते हैं उस उदार शांति के बीज पड़े जो आज इतनी हावी है। ये विचार की एक खास तरह की राजनीतिक व्यवस्था यानी लिबरल डेमोक्रेसी शांति की गारंटी है।
लेकिन इसी दौर में तो उपनिवेशवाद भी चरम पर था, है ना?
बिल्कुल, और यही वो बड़ा विरोधाभास है जिस पर रिचमंड ध्यान खींचते हैं। एक तरफ ये यूरोपीय ताकतें सार्वभौमिक शांति और तर्क की बातें कर रही थीं, और दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया में गैर यूरोपीय लोगों पर जबरदस्ती अपना राज थोप रही थीं।
तो शांति की परिभाषा भी कहीं ना कहीं ताकतवर तय करते हैं।
जाहिर है। और शीत युद्ध खत्म होने के बाद, मतलब 1990 के दशक में, ये उदार शांति वाला विचार एक तरह से ग्लोबल पॉलिसी बन गया। यूएन, वर्ल्ड बैंक, पश्चिमी सरकारें, बड़े बड़े एनजीओ, सबने इसे अपना लिया।
हाँ, एक तरह का माहौल बन गया था कि बस यही एक रास्ता है।
बिल्कुल, जैसे इतिहास खत्म हो गया हो और लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट ही हर मर्ज की दवाएं हैं।
और फिर इसे लागू करने का एक पूरा, मतलब फ्रेमवर्क बना।
हाँ, एक पूरा खाका तैयार किया गया। इसके तीन मुख्य पिलर माने गए। पहला, डेमोक्रेटाइजेशन, जल्दी से चुनाव कराओ, संसद बनाओ।
ठीक है।
दूसरा, मार्केट लिबरलाइजेशन, सरकारी कंपनियों को बेचो, व्यापार खोलो, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ो।
और तीसरा?
तीसरा, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, पश्चिमी मॉडल पर आधारित कानून और संस्थाएं बनाओ।
एक तरह का शांति का त्रिपॉड।
हाँ, बिल्कुल। और वादा यह था कि ये त्रिपॉड फॉर्मूला जो युद्ध से तबाह हुए समाज हैं उनमें स्थिरता लाएगा, शांति लाएगा, समृद्धि लाएगा। और इसे लागू करने के लिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मिशन भेजे गए।
हाँ, कई देशों में, बोस्निया, कोसोवो,
पूर्वी तिमोर, सियेरा लियोन, अफगानिस्तान, इराक, लिस्ट काफी लंबी है। शांति स्थापना एक बहुत बड़ा, आप कह सकती है, इंडस्ट्री बन गया। अरबों डॉलर्स इसमें खर्च हुए। भूमिका क्या बन गई? एक तरह से राष्ट्र निर्माण की, स्टेट बिल्डिंग की, मतलब बाहर से आकर एक खास किस्म का राज्य बनाना।
और यहीं से रिचमंड की जो मुख्य आलोचनाएं हैं वो शुरू होती हैं।
जी, पहली और सबसे तीखी, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि यह नव उपनिवेशवाद है। यह मानकर चलता है कि पश्चिमी मॉडल ही एकमात्र सही या मॉडर्न मॉडल है और इसे हर जगह लागू किया जाना चाहिए, भले ही वो समाज इसके लिए तैयार हो या ना हो, या उसके पास अपने कोई बेहतर तरीके हों।
दूसरी आलोचना क्या है?
दूसरी बड़ी आलोचना है कि ये स्थानीय संदर्भ, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है। इतिहास, संस्कृति, समाज का ताना बाना, लोगों की अपनी जरूरतें और सबसे जरूरी उनकी अपनी शांति बनाने की जो क्षमता है, जो एजेंसी है,
हाँ,
इन सबको दरकिनार कर दिया जाता है। बाहर से एक्सपर्ट आते हैं और मान लेते हैं कि वो सब जानते हैं,
और स्थानीय लोग बस मदद लेने वाले।
बिल्कुल, उनके जो सदियों पुराने झगड़े सुलझाने के तरीके हैं उन्हें पिछड़ा मान लिया जाता है।
तीसरा बिंदु क्या है?
तीसरा, रिचमंड कहते हैं कि ये अक्सर प्रेत राज्य या आभासी राज्य बनाता है, फैंटम स्टेट्स या वर्चुअल स्टेट्स।
मतलब
कागज पर तो सारी संस्थाएं बन जाती हैं, पार्लियामेंट, कोर्ट, मिनिस्ट्रीज, लेकिन उनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं होती। लोगों की नजर में उनकी कोई लेजिटिमेसी, कोई वैधता नहीं होती। वो बस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए और उनसे पैसा लेने के लिए काम करती लगती हैं।
इसके उदाहरण भी होंगे।
हाँ, बोस्निया या अफगानिस्तान जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जहां अरबों डॉलर खर्च होने के बाद भी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत कमजोर और भ्रष्ट रहे।
और चौथी आलोचना, ये शायद सबसे गंभीर है।
हाँ, और शायद सबसे खतरनाक भी। ये मॉडल कभी कभी संघर्ष को सुलझाने के बजाय और भड़का भी सकता है।
वो कैसे?
जैसे सोचिए, अगर आप किसी गहरे बटे हुए समाज में विनर टेक्स ऑल वाली चुनावी प्रणाली लागू कर दें, तो जो समूह हारेगा वो और ज्यादा अलग थलग महसूस कर सकता है और हिंसा बढ़ सकती है।
सही बात है।
या अगर आप बहुत तेजी से बाजार खोल दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो भारी आर्थिक असमानता पैदा हो सकती है, जो नए तरह के तनावों को जन्म दे। तो शांति का जो असल लक्ष्य था वो कहीं पीछे छूट जाता है और भूमिका सिर्फ एक खास तरह का शासन थोपने की रह जाती है।
तो अगर ये उदार शांति मॉडल इतना प्रॉब्लमैटिक है, इतनी सारी इसमें कमियां हैं, तो फिर विकल्प क्या है, रास्ता क्या है?
यहीं पर रिचमंड लोकल टर्न यानी स्थानीयता की ओर मुड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शांति स्थापना की कोशिशें टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप होनी चाहिए,
नीचे से ऊपर।
जी, ध्यान भारी एजेंडा पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों पर, उनके समुदायों पर, उनके ज्ञान और उनकी जरूरतों पर होना चाहिए।
और यहीं वो रोजमर्रा की शांति वाली बात फिर से अहम हो जाती है।
बिल्कुल, एवरीडे पीस का आइडिया यही बहुत महत्वपूर्ण है। शांति सिर्फ नेताओं के बीच हुए समझौतों में नहीं है, शांति उन छोटे छोटे तरीकों में है जिनसे आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं और हिंसा या नफरत के माहौल में भी इंसानियत बनाए रखते हैं। शांति मिशनों की भूमिका रिचमंड के अनुसार इन छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शांति की प्रक्रियाओं को समझना और उन्हें बढ़ावा देना होनी चाहिए।
एक और कॉन्सेप्ट आपने बताया था, हाइब्रिड शांति।
हाँ, हाइब्रिड पीस। रिचमंड मानते हैं कि असल दुनिया में शांति न तो पूरी तरह लिबरल होती है न ही पूरी तरह लोकल, हमेशा एक मिश्रण होता है, एक हाइब्रिड होता है।
कैसे?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाएं भी होती हैं, राष्ट्रीय सरकारें भी होती हैं, और साथ ही स्थानीय समुदाय, पारंपरिक नेता और उनके अपने रीति रिवाज भी होते हैं। ये सब आपस में टकराते भी हैं और मिलकर काम भी करते हैं।
अच्छा,
इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय रिचमंड कहते हैं कि यही हकीकत है। हमें इसी कॉम्प्लेक्स, मिलीजुली हकीकत के साथ काम करना सीखना होगा। जैसे फ्यूजन कुजीन होती है ना,
हाँ हाँ,
बाहर के तत्व और स्थानीय मसाले मिलकर कुछ नया बनाते हैं, वैसा ही कुछ।
तो यहाँ शांति स्थापना की भूमिका और लक्ष्य दोनों ही बदल जाते हैं।
बिल्कुल, भूमिका बाहर से समाधान थोपने वाले इंजीनियर की नहीं रहती, वो एक माली की तरह हो जाती है, जो स्थानीय जमीन को समझता है, वहां जो पहले से उग रहा है उसे पहचानता है और उसे फलने फूलने के लिए सही माहौल और मदद देता है।
और लक्ष्य
सिर्फ एक खास तरह का राज्य बनाना नहीं रह जाता, लक्ष्य बनता है मुक्ति, इमेंसिपेशन, यानी लोगों को उन सभी ढांचों से आजादी दिलाना जो उन्हें दबाते हैं, चाहे वो गरीबी हो, अन्याय हो, बाहरी ताकतें हों, ताकि वो सही मायनों में अपना भविष्य खुद तय कर सकें।
तो अगर हम रिचमंड के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं हमारे लिए?
पहला तो शायद यही कि शांति कोई एक चीज नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी कई आयाम है, इसे किसी एक फॉर्मूले में फिट नहीं किया जा सकता।
सिर्फ सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर ध्यान देना काफी नहीं है। दूसरा
और शायद सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय संदर्भ का बहुत ज्यादा महत्व है। अक्सर जो तरीके बाहर से बहुत मॉडर्न या वैज्ञानिक लगते हैं वो जमीनी हकीकत में फेल हो जाते हैं,
जबकि समुदाय के अपने तरीके कारगर हो सकते हैं।
बिल्कुल, जैसे भारत में ही हम देखते हैं, कई जगहों पर आज भी जो कम्युनिटी पंचायतें हैं या स्थानीय बुजुर्ग हैं, वो आपसी विवादों को शायद फॉर्मल कोर्ट से ज्यादा जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझा लेते हैं।
सही बात है। तीसरा संदेश।
तीसरा, हमें ये पहचानने की जरूरत है कि आज के जो अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं वो पुरानी कॉलोनियल सोच झलकती है, जहां पश्चिमी ज्ञान और मॉडल को बिना सोचे समझे बेहतर मान लिया जाता है। इस पावर इम्बैलेंस को समझना और चुनौती देना जरूरी है।
चौथा,
चौथा, हमें उदार शांति से आगे बढ़कर उदार पश्चात यानी पोस्ट लिबरल शांति की तरफ सोचना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स जैसे मूल्य बेकार हैं, नहीं।
तो फिर क्या
मतलब ये है कि इन मूल्यों को स्थानीय जरूरतों और संस्कृतियों के हिसाब से ढालना होगा, उन्हें ज्यादा समावेशी, ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ बनाना होगा। शांति ऐसी हो जो लोगों को अपनी लगे, बाहर से थोपी हुई ना लगे।
और पांचवा, आखिरी संदेश।
पांचवा, कि शांति सिर्फ संस्थाओं या कानूनों का मामला नहीं है, ये लोगों के नजरिए, उनके रिश्तों, उनके आपसी व्यवहार का भी मामला है। इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे न्यायपूर्ण कानून और नीतियां तो जरूरी हैं ही, साथ ही दिलों को जोड़ने और आपसी समझ बढ़ाने वाले काम भी उतने ही जरूरी हैं।
रिचमंड के विचारों में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे उनका वो कहना कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, कोई उत्पाद नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रयास है, एक सतत साधना।
हाँ, और उदार शांति मॉडल की आलोचना करते हुए उनका ये कहना भी बहुत चुभने वाला है। उदार शांति ने वादे तो बहुत किए पर दिया बहुत कम। इसने ऐसे आभासी राज्य और आभासी शांति पैदा की है जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाहों की कल्पना में ज्यादा बसती है, प्रभावित लोगों के जीवन में कम।
ये जमीनी हकीकत और कागजी रिपोर्टों के बीच का जो गैप है उसे दिखाता है।
बिल्कुल। और स्थानीय ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए वो कहते हैं, हर समाज में संघर्ष प्रबंधन और शांतिपूर्ण संबंध बनाने का परिष्कृत ज्ञान होता है, लेकिन बाहरीकर्ता अक्सर इसे पारंपरिक या पिछड़ा कहकर खारिज कर देते हैं।
ये एक तरह से बाहरी हस्तक्षेप करने वालों के लिए चेतावनी है कि भाई सीखने के लिए तैयार रहो, सिर्फ सिखाने के लिए नहीं।
सही कहा। और रोजमर्रा की शांति के बारे में उनकी ये बात तो दिल खुश होती है, असली शांति उन साधारण बातचीत और व्यवहारों से उभरती है जिनके जरिए लोग मतभेदों को संभालते हैं, असहमतियों का प्रबंधन करते हैं और विभाजन की रेखाओं के पार रिश्ते बनाए रखते हैं।
ये शांति को बड़े मंचों से उतारकर हमारी गलियों, मोहल्लों, हमारे घरों में ले आता है। ये शांति स्थापना के लक्ष्य को बहुत मानवीय बना देता है।
हाँ,
तो इन सब बातों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? जो लोग पॉलिसी बनाते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनके लिए क्या सबक है?
उनके लिए सबसे बड़ा सबक शायद विनम्रता है, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि उनके पास सारे जवाब नहीं हैं। स्थानीय समुदायों की बात सच में सुनना, उन्हें सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं बल्कि शांति प्रक्रिया के डिजाइन में बराबर का पार्टनर बनाना। और सफलता को सिर्फ मतलब चुनाव हो गए या कानून बन गए ऐसे फॉर्मल इंडिकेटर्स से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में जो वास्तविक बदलाव आया है उससे मापना।
और जो लोग कम्युनिटीज में काम करते हैं, लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं,
उनके लिए संदेश है कि अपने आसपास देखें, शांति बनाए रखने के कौन से तरीके पहले से मौजूद हैं, कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें पहचानें और मजबूत करें। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचें। बाहरी मदद का इंतजार करने के बजाय स्थानीय समाधानों पर जोर दें।
और हम जैसे आम नागरिक, हमारे लिए क्या है इसमें?
हम जब टीवी पर या अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों की खबरें पढ़ें तो थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें, पूछें कि क्या इससे वाकई उन लोगों का भला हो रहा है जिनके लिए ये किया जा रहा है। और साथ ही अपने ही आस पड़ोस में, अपने शहर में रोजमर्रा की शांति के जो छोटे छोटे उदाहरण हैं उन्हें पहचानें और उनकी सराहना करें। वो पड़ोसी जो झगड़ा सुलझा देते हैं, वो टीचर जो बच्चों में भेदभाव नहीं होने देते, वो दुकानदार जो सबसे सम्मान से बात करता है, ये सब भी तो पीसमेकर्स हैं।
काम नहीं है, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने चुनाव से शांति या अशांति में योगदान करते हैं।
हाँ, मतभेदों को सम्मान से संभालना, अलग दिखने वाले या सोचने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब शांति निर्माण के ही हिस्से हैं।
तो कुल मिलाकर ओलिवर रिचमंड के विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो शायद यही है कि शांति का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना संदर्भ है, हमें इस जटिलता को समझना होगा। और स्थानीय ज्ञान और लोगों की अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, शांति स्थापना का लक्ष्य और भूमिका, जैसा आपने कहा, बाहर से मॉडल थोपना नहीं बल्कि अंदर से क्षमता को सींचना और लोगों को सशक्त बनाना होना चाहिए।
जी हाँ, यह एक बुनियादी नजरिए के बदलाव की बात है। फोकस को टॉप डाउन यानी सिर्फ सरकारें और संस्थाएं बनाने, स्टेट बिल्डिंग से हटाकर बॉटम अप यानी समाज को जोड़ने और मजबूत करने, सोसाइटी बिल्डिंग पर लाना होगा। ये आम लोगों की समझ, उनकी कोशिशों और उनकी रोजमर्रा की जीतों और हारों को पहचानने और सम्मान देने की बात है।
तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचिएगा इस पे। हम अपने आसपास, अपने समाज में, जिसे हम शायद स्थिर या शांतिपूर्ण मानते हैं, वहां भी रोजमर्रा की शांति के उन छोटे, अक्सर अनदेखे प्रयासों को कैसे बेहतर ढंग से देख सकते हैं और उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है।
और क्या हमारे अपने समाजों में भी उदार शांति की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन पर हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।